ओम शांति। आज की मुरली तो सुना होगा ना सभी ने। आज अव्यक्त मुरली थी। तो सर्व अनुभूतियों की प्राप्ति का आधार क्या है? पवित्रता है ना। कोई भी अनुभूति करनी है ना, कोई भी अनुभूति की प्राप्ति चाहिए तो इसके लिए चाहिए पवित्रता है ना। तो दुनिया में देखें पवित्रता किसे कहते हैं दुनिया में? जी ब्रह्मचर्य को केवल। और वास्तव में ब्रह्मचर्य भी क्या है? हाँ ब्रह्मचारी तो हो गया, लेकिन दुनिया में भी जो कहते हैं ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य अर्थात जी, और वास्तव में ये कोई बहुत अलग चीज नहीं है। कोई भी चीज, जैसे देखिए आप, जैसे ये शरीर है ठीक है, इसको प्यास लगती है ना, कभी प्यास लगती है अर्थात इसको क्या चाहिए? पानी चाहिए। अच्छा प्रॉपर पेड़ पौधे हैं, आप वहां बैठे हैं, प्रॉपर आपको ऑक्सीजन मिल रही है, ये भी शरीर की रिक्वायरमेंट है। तो पानी चाहिए, मिट्टी चाहिए, इसीलिए आजकल कहते हैं नंगे पांव थोड़ा चलो, जमीन के संपर्क में रहो। तो जो भी चीज जिस चीज की बनी है ना, उसको उसको देना है ना, ये उसका स्वरूप है ना, उसके लिए आवश्यक है, यही उसकी पवित्रता है ना। जैसे आप कोई चीज है, मान लो चना गेहूं सब कुछ एक ही में मिक्स तो नहीं करेंगे ना, कहेंगे भाई अलग अलग रखो चना अलग, तब कहेंगे ना ये शुद्ध है, नहीं तो कहेंगे ना इसमें तो मिक्सचरिटी है, तो मिला हुआ है। ठीक है वो दोनों चीजें, लेकिन दोनों अलग अलग होना चाहिए। तो इसीलिए जो अंतरिक्ष यात्री भी हैं, जो जाते हैं ना अंतरिक्ष में, तो वह भी वहां 4 महीने से ज्यादा नहीं रह पाते। यहां जब रहते हैं तो यहां से उन्हें वहां जाने में बहुत डर लगता है, मृत्यु का बहुत समझाना पड़ता है, बहुत कोर्स होता है, लेकिन वहां जाने के बाद डर खत्म हो जाता है, क्योंकि ये जो विकारी संकल्प है ना, ये धरती के आसपास ही है कुछ किलोमीटर में, इससे ऊपर जाते हैं ना डर जैसे खत्म हो जाता है, वो आना नहीं चाहते वहां से, लेकिन फिर भी उनको लाना पड़ता है अधिक से अधिक 4 महीना। 4 महीने के बाद क्या होता है, जो हड्डी आदि है ना वो गलने लगती है, क्योंकि जो चीज जहां की है तो धरती के पास उसको आना ही पड़ेगा, धरती की चीजें चाहिए है ना। तो इसीलिए जो चीज जहां की होती है ना, अब जैसे जिसका शरीर जहां का बना है, जैसे मान लीजिए किसी का अमेरिका का बना है, किसी का यहां का बना है, तो वो जब आत्मा शरीर शरीरधारी जब वहां पहुंचेंगे ना, तो वहां बहुत जल्दी रिकवरी होती है जिसका जहां का बना है। तो इसी प्रकार ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य अर्थात कहां रहना, ब्रह्म तत्व है ना, आत्मा का जो है ना, आत्मा को सबसे ज्यादा आराम कहां मिलता है? ब्रह्म तत्व में। तो जब ब्रह्म तत्व में आत्मा रहती है, उसी को क्या कहते हैं? ब्रह्मचर्य। ये पवित्रता की पहली रिक्वायरमेंट है। तो इसे बाहर की दुनिया में भी मानते हैं, जो संत हैं, विद्वान हैं, उन्हें भी मालूम है कि ब्रह्मांड होता है ऐसे, तो उसकी स्मृति में रहते हैं। हाँ परमात्मा को तो नहीं जानते पूरी तरह से वो, लेकिन परमात्मा को भी वो समझते हैं, याद तो करते हैं, और ब्रह्म तत्व को भी याद करते हैं। तो इसीलिए आत्मा जब ब्रह्म तत्व में है तो क्या होता है उसका, उसकी पावर बढ़ती है ना। और जब आत्मा वहां से दूर होती है ना, ब्रह्म तत्व से दूर होती है, तो इसकी डिग्री क्या होने लगती है? घटने लगती है ना। तो पवित्रता की पहली निशानी ये हो गई, पहली धारणा क्या हो गई? ब्रह्म तत्व में सबसे अच्छा, इसमें सब कुछ आपका आ जाता है, कुछ बाकी नहीं। आप जैसे, इसीलिए बाबा कहते हैं ना कि बाप को और घर को भी याद करो, बाबा को याद करते तो है बिंदु बन करके, बिंदु को याद कर रहे हैं लेकिन घर को भी याद करते हैं। तो बाबा इसलिए क्या कहते हैं, जब घर को याद करते हैं बेहद के घर को परम धाम को, तो क्या हो जाते हैं, मोह ऑटोमेटिक खत्म हो जाता है, मोह नहीं रहेगा। क्योंकि जब वास्तविक घर देखते हैं कि हमारा घर कितना बेहद का सुनहरे लाल रंग का आकाश, केवल लाल नहीं, कैसा सुनहरे लाल रंग का आकाश, उसको भी देखते हैं ये घर है ना, तो वास्तविक पवित्रता है ये। लेकिन बाबा ने और क्या कहा आज कि पवित्रता अर्थात ब्रह्माचारी, ब्रह्माचारी अर्थात बाबा के स्टेप पर है ना, कदम पर कदम रखना। तो इसमें भी बाबा ने आज कहा कि बाबा कहां देखते हैं पवित्रता को, हर एक बच्चों के जो चेहरे हैं ना, चेहरे में क्या देखते हैं, रूहानियत है ना, हर एक बच्चे के चेहरे पर रूहानियत कितनी है बाबा यही देखते हैं। और रूहानियत का आधार क्या है बाबा ने बताया, पवित्रता। जितना पवित्र बनते हैं उतना ही चेहरे पर क्या आती है, रूहानियत आती है। रूहानियत क्या करती है, अट्रैक्ट करती है हर एक को, भगवान को भी अट्रैक्ट करती है। तो इसीलिए बाबा हर एक के चेहरे को देखते हैं। तो बाबा ने कहा कि ये रूहानियत जो है ये पवित्रता से आती है। और पवित्रता कैसे आती है, पवित्रता कैसे चेक करें, संकल्प बोल और कर्म, संकल्प बोल और कर्म ये तीन है ना। तो बाबा ने कहा कि इन्हीं तीनों के आधार पर पवित्रता आती है। इसीलिए शास्त्रों में देखेंगे, शास्त्रों में क्या गायन है कि वामन है ना, वामन रूप में भगवान ने क्या किया, बलि है ना, जो दानवों का राजा था ना, दैत्यों का राजा था, तो बलि को कितने कदम में माप दिया, तीन कदम में। वो तीन कदम का महत्व क्या मतलब है, अर्थ क्या हुआ, तो ये जो बाबा ने आज कहा ना, मनसा है ना, संकल्प वाचा और कर्मणा, तो अगर इन तीनों पर अगर हम ध्यान देते हैं तो यही तीन कदम है। और इसी तीन कदम से हम माया बलि को क्या कर सकते हैं, माप सकते हैं। जैसे किसी को हरा देते हैं, कोई हार जाता है तो क्या कहते हैं, अरे ये तो नप गए है ना, ये तो नप गया, नप गया मिस। तो ऐसे ही जब माया हार जाती है तो उसको क्या कहते हैं, जैसे वामन ने माप दिया, ऐसे ही हमको भी क्या करना है, तीन कदम में हम भी माया बलि को खत्म कर सकते हैं। बस क्या करना है, संकल्प वाचा और कर्मणा, इन तीनों पर ध्यान देना। क्योंकि माया कहां से आती है, किसके थ्रू आती है, पहले पहले माया कहां आती है, संकल्पों में है ना। संकल्प कैसे होंगे, अरे आपसे तो ये होगा ही नहीं, ये मंजिल तो बहुत बड़ी है ना, बहुत अच्छे अच्छे लोग किए और हो नहीं पाए, ये संकल्प है, ये संकल्प। अब ये संकल्प से कौन काम कर रहा है, कौन काम कर रहा है, माया बलि है ना, जो बलि है ना, अब ये बलि का प्रभाव आपके ऊपर हो रहा है। तो जितना ऐसे सोचेंगे तो माया, संकल्प क्या होगा, मन क्या होगा, कमजोर, अर्थात आप किसके प्रभाव में आ गए, माया बलि के है ना। ऐसे ही आप वाचा भी कमजोर बोल बोल बोलने लगे है ना, दिल शिकस्त वाले बोल बोलेंगे है ना, खुद भी दिल से कष्ट होंगे, दूसरे को भी करेंगे। ये भी किसका प्रभाव है? माया का। कर्मणा में क्या होगा? कर्मणा में क्या होगा? अटैच, मोह या किसी से युक्त हो जाएंगे, है ना। तो जब किसी से युक्त हो जाते हैं, किसी से जुड़ जाते हैं ना, तो भी ताकत बहुत कम हो जाती है। कोई कितना भी शक्तिशाली हो, मान लो हाथी भी है, उसको बांध दिया गया अच्छी तरह से, क्या करेगा उसको? जब तक फ्री नहीं करेंगे ना, फ्रीडम नहीं देंगे उसको, तो हाथी भी कुछ नहीं कर सकता। फ्रीडम चाहिए। तो हमारा मन कितना भी पावरफुल है, लेकिन हम कहीं से जुड़ गए तो मन क्या हो जाता है? कमजोर हो जाता है। तो ये जो मन कमजोर हो रहा है, यही क्या हो गया? ये माया बली है ना, वो हमारे ऊपर राज कर रहा है। लेकिन खत्म हमको उसे करना है। तो इसलिए हमेशा मेरा ध्यान हो कि इन तीनों कदमों पर, संकल्प, वाचा, कर्मणा। तो इसमें हम जितना पवित्रता लाएंगे, जितना शक्तिशाली बनेंगे, तो स्वतः माया क्या हो जाएगी? माया बलि नप जाएगा, है ना। और इसीलिए बाबा ने और क्या कहा कि जो ऐसी आत्मा, जो ब्रह्मचारी होगा, ब्रह्मचारी उसको क्या होगा? जो ब्रह्मचारी होगा उसका चेहरा कैसा होगा? हाँ, रूहानी तो होगा और अंतर्मुखी, चमक भी होगी, ये भी कहा बाबा ने। लेकिन बाबा ने कहा कि जो ऐसी आत्मा होगी ना, उसके चेहरे पर क्या होगी? वो अंतर्मुखी होंगे, बाबा ने कहा। और जो आत्मा अंतर्मुखी होगी, वो सदा क्या होते हैं? अतीन्द्रिय सुख में, है ना। इसीलिए क्या कहा जाता है? अंतर्मुखी सदा सुखी, है ना। तो इसीलिए हमको क्या करना है? इन दो बातों पर हमें ध्यान रखना है। एक तो हमें अगर पवित्रता चाहिए तो, एक तो ब्रह्मचर्य, परमधाम में स्थित रहें थोड़ा, और दूसरा अगर यहां रहना है तो क्या करना है? ब्रह्मचारी, बाबा कैसे रहते थे, बाबा कैसे बोलते थे, बाबा ब्रह्मा बाबा को कॉपी करना, उनके बारे में आपको हाँ पता करना कि पढ़े उसको एक एक बात, बाबा कैसे किसी से मिलते थे, बाबा का कोई अपमान करता था तो बाबा क्या करते थे, बाबा भोजन कैसे करते थे, बच्चों के साथ कैसे करते थे, बाबा की जिम्मेदारी क्या थी। जब हम जानेंगे तभी तो उनके जैसा बनेंगे। तो ये जानकारी हमें चाहिए। तो इसके लिए जो है ना, ब्रह्मा बाबा के बारे में तो अगर पूरा चाहिए तो क्या पढ़ें? जीवन पलटाने वाली है ना, अद्भुत जीवन कहानी, दो पुस्तक है, तो उसको पढ़ना चाहिए। या साकार वाणी पढ़ते रहे, साकार वाणी तो है ही, इसमें भी हमें पता चलता है। तो जब हम बाबा के बारे में जानेंगे तभी हम उनको फॉलो कर सकते हैं, है ना। तो इसीलिए पहले हमें ब्रह्मा बाबा के बारे में बहुत अच्छी स्टडी होनी चाहिए, है ना। अच्छा, और बाबा ने कहा कि साधना है ना, अभी क्या करना है? साधना करनी है। तो बाबा ने कहा कि साधना मीन्स साधनों को आधार नहीं बनाना है, है ना। जैसे कई बार क्या सोचते हैं, योग करने बैठे और आपका कोई बहुत पसंदीदा गीत नहीं बजा, कोई दूसरा गीत बज गया, क्या कहेंगे? क्या कहेंगे, ये कौन सा गीत बजा दिया, नहीं हा? और कोई गीत नहीं मिला क्या, यही गीत बजाया है ना, अब क्या हुआ? क्योंकि गीत के आधार पर हमारा है ना, गीत बहुत अच्छा तो बहुत अच्छा योग, गीत अच्छा नहीं तो ऐसे मान लीजिए कहीं भी आपने ऐसे बनाया, आधार बना लिया साथ साधनों को, जैसे अगर हम गार्डन में बैठे हैं, खुला हो, सब कुछ खुला वायुमंडल हो और हर, तो हम बहुत अच्छा योग कर सकते हैं। कोई आवाज ना हो तो हम बहुत अच्छा योग करेंगे, कोई हमको विघ्न ना आए, कोई समस्या ना रहे, तो बड़े हमारी स्थिति बड़ी अच्छी रहेगी। ये क्या है? यही साधनों का आधार हो गया। तो ये साधनों को आधार नहीं बनाना है। बाबा ने कहा अगर साधनों को आधार बनाएंगे ना तो क्या होगा, साधनों को आधार बनाएंगे तो दिन पर दिन क्या होगा, साधना तो कमजोर कम होगी ही। हर एक चीज की सीमा होती है। जैसे मान लो आप कहेंगे ना हमको स्वीट खाते हैं ना बहुत अच्छा लगता है ना, तो स्वीट आपकी क्या है, आप स्वीट खाते हैं या कोई बहुत टेस्टी चीज खाना खाते हैं कभी कभी, तो क्या होगा, इसकी भी एक सीमा होगी। इसके बाद अभी आपकी उम्र मान लीजिए 20 ईयर्स हैं, 40 ईयर्स हैं, तो अभी आप खा रहे हैं, फिर आपको मान लीजिए 60 ईयर हो गई, 70 हो गई, तो लोग क्या कहेंगे, अरे भाई अपने उम्र का तो थोड़ा उम्र का तो ख्याल रखो ना। क्योंकि जब उम्र ज्यादा होती है तो सब कंट्रोल करना पड़ता है ना, आप मीठा भी नहीं खा सकते, ज्यादा देख भी नहीं सकते, चश्मा भी लग जाएगा, है ना, सब लिमिटेशन हो जाते हैं। तो ये इंद्रियों की शक्ति का एक, जो इंद्रियों की सीमा है ना, इनके सुख का एक जगह खत्म हो जाती है बिल्कुल, उससे आगे आप कुछ नहीं कर सकते, है ना। तो ये इंद्रियों का सुख दिन पर दिन कर क्या होना, होते जाना है, कम होता जाएगा। जो बचपन में आपको इंद्रियों का सुख था वो जब बुजुर्ग होंगे तो उस समय थोड़ा होगा। ये इंद्रियों का सुख समाप्त हो ही जाएगा, लिमिटेड है, है ना। इसीलिए बाबा ने क्या कहा, आप किसको आधार बनाओ, किसको आधार बनाओ, बाबा को। हाँ, तो अगर बाबा को हम आधार बनाते हैं, बाबा को हमेशा साथ रखते हैं, तो बाबा ने क्या कहा, सदा क्या रहेगी, उड़ती कला रहेगी। बाबा ने कहा सदा उड़ती कला रहेगी यदि बाबा साथ है। तो बाबा ने इसलिए कहा कि इस बात की मना नहीं कि आप साधनों को यूज नहीं करो, यूज करो, लेकिन उस पर एकदम डिपेंडेंसी जैसे नहीं हो जाए, है ना, वही याद आता रहे, उसके बिना काम ही नहीं चले, है ना। तो इसीलिए हमें यूज करना है, लेकिन मुख्य हमारा जो आधार है, मुख्य सहारा कौन हो, बाबा। इसीलिए बाबा बोलते हैं कई बार कि कभी भी किसी देहधारी को भी आधार नहीं बनाओ, क्योंकि जितने भी आप आधार बना लो दुनिया में सभी खत्म होने एक नहीं, कोई भी हो आपके पास, अच्छा हो या बुरा हो, कोई भी कैसा भी हो, सब क्या होना है, एक दिन तो बिछड़ना है ना सबको, है ना। तो इसलिए बाबा ने कहा, दूसरा है कि सेवा के बारे में बाबा ने कहा कि चार प्रकार की सेवा है ना, स्वयं की सेवा, विश्व की सेवा, मनसा सेवा। तो मनसा सेवा के साथ ही है वाचा सेवा, है ना, मनसा सेवा और वाचा सेवा एक साथ हो गया। और चौथी सेवा क्या बताया बाबा ने, यज्ञ सेवा, है ना। तो इसमें जैसे स्व सेवा, विश्व सेवा और मनसा और वाचा, तो ये तो आप सुनते ही रहते हैं, लेकिन जो मनसा सेवा है और वाचा सेवा, इसके लिए बाबा कई बार क्या कहते हैं कि वाणी में जौहर, है ना, वाणी में जौहर कब आएगी, जब हम बाबा की याद में रहेंगे। जितना जितना हम बाबा को याद करेंगे तो उतना ही हमारी मनसा क्या होगी, पावरफुल होगी। जितना बाबा की याद में रहेंगे तो मनसा बहुत पावरफुल हो जाएगी, और जब मनसा पावरफुल होगी ना तो जो भी आप बात बोलेंगे, जो भी शब्द बोलेंगे ना, वो सीधा लोगों को लगेगा, कम बोलना पड़ेगा, है ना। तो इसीलिए बाबा कहते हैं कि आप याद में स्थित रहो, जितना बाबा को याद करेंगे इतना ही मनसा पावरफुल होगी, और मनसा पावरफुल हो गई तो आपको बहुत थोड़ा बोलना है। चौथा बाबा ने कहा यज्ञ सेवा, है ना। तो यज्ञ सेवा में बाबा ने क्या बताया कि यज्ञ सेवा अर्थात बाबा ने कहा कि यज्ञ सेवा अर्थात केवल ऐसा नहीं कि केवल मधुबनी यज्ञ है, नहीं, बाबा के जितने भी सेवा केंद्र हैं, है ना, जितने सेवा केंद्र हैं बाबा के सभी क्या है, यज्ञ है। इसीलिए कहते हैं कि बाबा ने पूरे इस सृष्टि पर ही यज्ञ रचा, इसी में तो विनाश होता है ना, विनाश ज्वाला, पूरी सृष्टि ही विनाश ज्वाला बन जाती है। तो इसीलिए बाबा ने कहा कि बाबा ने क्या कहते हैं जो यज्ञ रचा सारे विश्व में, तो इसका महत्व कितना है यज्ञ का। बाबा ने कहा ऐसा नहीं हमारी सेवा तो केवल वाचा की है, हमारी सेवा हम तो केवल मनसा सेवा करेंगे, लेकिन यज्ञ सेवा का इतना महत्व है कि बाबा ने एक मुरली में कहा है कि अगर आप 11 दिन विधि प्रमाण ये विधि पूर्वक सेवा करते हैं तो 11 दिन में आप 11 साल की कमाई जमा कर सकते हैं। और एक मुरली में बाबा ने तो यहां तक कहा है कि यदि आप 11 दिन निमित्त बनकर सेवा करते हैं तो 11 दिन में क्या होगा, 11 जन्मों की कमाई जमा कर सकते हैं। तो क्या विधि होगी, 11 दिन में कैसे 11 साल की या 11 जन्म की करेंगे, बताइए क्या विधि होगी। श्रीमत, क्या श्रीमत, ये तो स्थिति की बात हो गई, बट सेवा में जैसे हम इंस्ट्रूमेंट है ना, जैसे कहते हैं ना कि जो न्याय दिखाते हैं ना, न्याय करते हैं, उसका क्या दिखाया जाता है, आंखों पे क्या बदिए पट्टी, तो उसमें क्या होता है जब हम न्याय करते हैं या जजमेंट करते हैं तो हम सही जजमेंट, वास्तविक जजमेंट कब कर सकते हैं, जब हमें ये नहीं मालूम कि इधर कौन है इधर कौन है, है ना। मान लीजिए जज बैठा हो और उसको दिखाई दे ये तो मेरा बेटा है, फिर कैसा जजमेंट होगा, इसीलिए आंख पट्टी होती है, ये ना पता चले कौन मेरा है कौन पराया है।